तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 20 ओम नमः सिद्धे स्वामी द्वारा लिखित जो तत्वार्थ सूत्र है उसके पर जो रामजी भाई दोषी की टीका है मोक्ष शास्त्र नामक, उसके हम पेज नंबर 55 पर आए हैं। गुजराती में दो चार पेन पीछे होंगे 47 अच्छा हाँ, और हम पहले अध्याय के अभी 15 सूत्र को देखने वाले हैं। 14 सूत्र तक तो हम कल तक देख चुके हैं, अभी हाँ पढ़ेंगे ना, पढ़ने जा रहे हैं कहाँ, अभी पढ़े नहीं हैं। उसके पहले निमित्त और उपादान के बारे में यहाँ कुछ बताना चाहते हैं। तो हमने तो ये याद भी किया है और हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण के, प्रत्येक पर्याय में स्वयं की निज शक्ति होती है, उस रूप परिणमने की, उसको उपादान कारण कहते हैं। और उस समय वह जो कु कार्य होगा, प्रत्येक पर्याय इटसेल्फ कार्य है, वह जो कार्य है उस कार्य में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। ये तो हमें अभी मालूम है। तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा अलग लिखा है, अर्थ तो वही है, कह रहे निमित्त का अर्थ क्या बताया उन्होंने, संयोग रूप कारण। अब ये संयोग रूप कारण जो है, देखो मैं आपको ये उदाहरण देता हूं। अपने यहां एक बहन आती थी स्वाध्याय में, उसकी दो बेटियां थी, जुड़वा बेटियां थी, तो दोनों मैट्रिक में थी और वो यहां आती थी रोज। कौन? उसकी माँ, यानी जो अपने यहाँ आने वाली बहन। और वो दोनों बेटियां मैट्रिक में फेल हो गई, तो लोग कहने लगे तू घर में नहीं रहती थी ना, निमित्त कारण क्या है, तेरा एब्सेंस, हाँ इनको फेल किया। तो यहाँ संयोग रूप बताया, और वो कैसा था, वियोग अभावात्मक है, ख्याल में है ना। इसलिए मैंने ये बताया संयोग रूप कारण जो है वो हमेशा वैसा है, क्योंकि निमित्त कारण दो प्रकार का है, एक सद्भावात्मक भी होता है और एक अभावात्मक भी होता है। क्यों साहब ऐसे दलिंदर क्यों घूम रहे हैं? तो दूसरा कहेगा कि इसने कुछ मेहनत ही नहीं की, तो मेहनत नहीं की ये भी अभाव रूप हो गया, ख्याल में। तो ये अभी वहां तो उन्होंने बताया है, वो तो बिल्कुल जिसको कहते हैं सामान्यतः कहा गया है, लेकिन उपादान जो कह रहे हैं वो वस्तु की सहज शक्ति। और ये जो वस्तु की शक्ति है वह तो वस्तु तो कुछ परिणमता नहीं है ना, गुण परिणमता है, परिणमने वाला तो पर्याय ही है। और पर्याय में जो निज शक्ति है वह सहज शक्ति है। सहज शक्ति का अर्थ क्या होता है, इस सहज शक्ति यानी वो किसी ने बनाई नहीं है, निसर्गता वैसी है, स्वाभाविक रूप से वैसी है। यानी अभी मान लो कि किसी को गुस्सा आया तो वो पर्याय की उस रूप परिणमने की सहज शक्ति है, संयोगों ने उसे ऐसा गुस्सा दिलाया है, ऐसा है नहीं। जैसा ये ट्रैफिक का आवाज हो रहा है और हमें गुस्सा आता है कि क्या है, कितना आवाज कर रहे हैं, पर वो ट्रैफिक के कारण से गुस्सा आया ये बात नहीं है। ये पर्याय जो क्रोध रूप परिणमनी थी वो उसकी सहज शक्ति है, ये बात है। तो क्या कहा देखो, उपादान इज इक्वल टू वस्तु की सहज शक्ति। हमने देखा था निज शक्ति। इस शास्त्र के 10वें सूत्र की टीका में निमित्त उपादान संबंधी स्पष्टीकरण किया है, वहां से विशेष समझ लेना चाहिए, जिसका हमने अभी इसका अभ्यास किया था। तत्प्रमाण नाम का जो कुछ 10वां सूत्र है उसमें वो बात आई थी। आपको पढ़ना है तो फिर से देख लेंगे, मेरे यहाँ 45 पेज है, 39 वहां क्या लिखते नीचे प्रश्न उत्तर के नीचे, यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करे तो उपादान और निमित्त की स्वतंत्र सत्ता न रहे। उपादान निमित्त का कुछ नहीं करते और न निमित्त उपादान का कुछ करता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूप से अपने अपने कारण से अपने लिए उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं ना अपने अपने कारण अपने परिणाम थे अपने अपने कारण से। ऐसा नियम होने से अपनी योग्यता अनुसार निमित्त उपादान दोनों के कार्य स्वतंत्र पृथक पृथक होते हैं। यदि उपादान और निमित्त ये दोनों मिलकर काम करें तो दोनों उपादान हो जाए, अर्थात दोनों की एक सत्ता हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। अभी हम दोबारा पेज नंबर 55 यानी 47 पे आते हैं। उपादान निमित्त कारण प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक कार्य में दो कारण होते हैं, एक है उपादान और दूसरा है निमित्त। इनमें से उपादान तो निश्चय यानी वास्तविक कारण है, यानी वह जो पर्याय हो रही है या पर्याय परिणम रही है वो अपने निज शक्ति से परिणमती, यह निश्चय कारण है, और वो दूसरे ने वो कार्य किया ऐसा कहना यह निमित्त कारण की बात है, व्यवहार कथन है। क्या कहा, तो निश्चय यानी वास्तविक कारण है और निमित्त व्यवहार आरोप कारण है, अर्थात वह जब उपादान कार्य कर रहा हो तब वह उसके अनुकूल उपस्थित रूप यानी विद्यमान होता है। यानी मान लो कि एक कुम्हार का घर है और तीन भाई हैं, तो एक भाई तो सोया है और दूसरा भाई खाना खा रहा है और एक भाई वो घड़ा बनाने की चेष्टा कर रहा है, तो हम अनुकूल किसको कहेंगे कि जो वहां खड़ा है बैठा है, या सोया हुआ को कहेंगे वो निमित्त कारण करके अनुकूल है और उपस्थित है इसलिए उसको कह रहे हैं, उसी को हम निमित्त कारण कहेंगे। अनुकूल उपस्थित यानी विद्यमान होता है, कार्य के समय निमित्त होता है, किंतु उपादान में वह कोई कार्य नहीं कर सकता। वह यानी किसको बताना है नितिन भाई? हाँ शाबाश, इसलिए उसे व्यवहार कारण कहा जाता है। जब कार्य होता है तब निमित्त की उपस्थिति के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक उपस्थिति और दूसरी काल्पनिक उपस्थिति। जब छद्मस्थ जीव विकार करता है तब द्रव्य कर्म का उदय उपस्थित रूप होता ही है। कोई भी कार्य होता है तो तब तब जो कोई नियम से उपस्थित रहता है ऐसे कारण का क्या नाम है? वीरेंद्र भाई आप जानते हैं? वीरेश भाई सॉरी। जब कोई कार्य होता है तो वो निमित्त हाजिर होता ही है, ऐसे कारण को कौन सा कारण कहते हैं? याद है आपको? मैं निमित्त की बात पूछ रहा हूँ। कोई विशिष्ट कार्य तीन काल में होता ही होता है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अलग अलग प्रसंग में, तब वह निमित्त कारण अवश्य होता ही है। उसको क्या कहते हैं आप जानते हैं? हाँ, अंतरंग कारण, यानी जो आप कह रहे हैं नियम रूप कारण, यानी जैसा हम ऐसा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को सम्यक दर्शन हुआ, अभी हम केवल औपशमिक सम्यक्त्व की बात करेंगे तो और आसान होगा। तो जब जब किसी को प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है तब दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होता है। और हम कोई सम्यक्त्व की बात करेंगे तो वहां दर्शन मोहिनी का अनुदय है, वो निमित्त रूप। फिर बाद में अन्य हमने देखा ना कि देव को ऐसे ऐसे निमित्त कारण होंगे, नारकी को ऐसे ऐसे होंगे, बहुत सारी बातें हमने देखी थी। तो वो बहिरंग कारण कहे। और जो नियम रूप से, क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि नारकी को वेदना सम्यक्त्व का बहिरंग कारण है, इनको महर्षि या महर्षि जो कुछ है उनके जो कुछ बातें दिखती है, वैभव दिखता है, वो हो सकता है। हाँ सर, देव महर्दिक पता है, देववृद्धि जो है, महारुद्धि जो है, वो देख के ऐसा लगता है कि अरे ये कैसा इस तरह, या उनको भगवान के दर्शन से होता है देवों के, और नारकी को कहाँ दर्शन मिलना है, सातवें नर का नारकी को कुधर इधर उधर घूम ही नहीं सकता है। तो उनको वो जो कोई कारण होगा उसको बहिरंग कारण है, और जो नियम रूप से रहता ही है उसको हम अंतरंग कारण कहेंगे। ये क्या है, नाम थोड़े से अलग तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, और हम तो अंतरंग यानी अपने अंदर में होगा वो, बहिरंग यानी बाहर में होगा वो, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है। ये बात विशेष रूप से ध्यान में लाने के लिए मैंने ये बात उठाई। यहाँ जो बात कह रहे हैं, देखो क्या कहा उन्होंने, निमित्त की उपस्थिति के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक उपस्थिति और एक काल्पनिक उपस्थिति। ये उन्होंने उनकी अपेक्षा से दो बातें बताई, उसको भी देखेंगे। जब छद्मस्थ जीव विचार करता है, ओ छद्मस्थ जीव विकार करता है तब द्रव्य कर्म का उदय उपस्थित होता ही है। वहां द्रव्य कर्म का उदय उस विकार का वास्तविक उपस्थित रूप निमित्त कारण है। यदि जीव विकार न करे तो वही द्रव्य कर्म की निर्जरा हुई कहलाती है, तथा जीव जब विकार करता है तब तो कर्म की उपस्थिति वास्तव में होती है अथवा कल्पना रूप होती है। जीव तथा जीव जब विकार करता है तब तो नो कर्म की उपस्थिति वास्तव में होती है अथवा कल्पना रूप होती है।
क्या कहते हैं? क्रोध हो रहा है, इसका अर्थ क्या, क्रोध कर्म का उदय तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि क्रोध कर्म का उदय नहीं जीव को क्रोध हो रहा, ऐसा नहीं सर। तो वो तो निमित्त रूप से वहाँ उसकी उपस्थिति हो, परंतु नौ कर्म यानी क्या, शरीर मन वाणी आदि, तो वो होने ही चाहिए, ये जरूरी है। क्या है तो यानी हम तो कल्पना में भी किसी व्यक्ति को याद करके उसके अगेंस्ट कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कल्पना में भी हो जाते हैं राग द्वेष, वो सामने वो व्यक्ति हो या ये शरीर हो या कुछ आदमी हो, ये जरूरत नहीं है। ये बात नौ कर्म वहाँ हाजिर होना ही चाहिए, ये जरूरत नहीं है। इसलिए
मैं तो दूसरी तरह से देखूंगा कि कोई विग्रह गति में तीन मोड़ के साथ जा रहा है, कोई जीव एक केंद्रीय जीव है, उसको मैक्सिमम जो मोड़ लगते हैं तीन मोड़ चार समय लगते हैं, तो चार समय में वो कोई ना कोई क्रोध रूप या मान रूप या अन्य रूप कषाय करेगा कि नहीं, तो वह शरीर का है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। अभी मान लो कि कुछ ऐसा प्रसंग बना तो क्रोध होने के बदले मुझे मान हुआ, तो वहां जो क्रोध का उदय, क्योंकि टाइम तो क्रोध का उदय होने का था कर्मों में, तो वो मान रूप टर्न होके उदय आया, तो स्वमुख से न होते परमुख से उदय में आया, तो उसकी निर्जरा हो गई ऐसा।
तो
मान
कैसे तो उदय हुआ ना,
उसकी कौन ना बोल रहा है, क्रोध की निर्जरा हुई ना भाई।
मिथ्यात्व के बारे में सोचो।
हाँ बोलो।
मिथ्यात्व में जब समय दर्शन हो जाता है तो मिथ्यात्व का क्या हो जाता है, समय प्रकृति रूप होकर निकल जाता है, यानी वो प्रदेश निकल गए, वो अपने रूप से उदय में नहीं आए, प्रदेश निकल गए उसके नीचे इस तरह से।
देखो चेंज ये है कि यहाँ जो लिखा है कि तथा जीव जब विकार करता है तब, और आगे लिखा तो तब तो को हटाकर तब, इधर कर्म लिखा है उधर नो कर्म की उपस्थिति, नो कर्म यानी शरीर मन वाणी की उपस्थिति वास्तव में होती है अथवा कल्पना रूप होती है, वो होगी भी और नहीं भी होगी, कल्पना में ऐसा सोचेंगे। निमित्त होता ही नहीं यह कहकर यदि कोई निमित्त के अस्तित्व का इनकार करे तब उपादान अपूर्ण हो तब निमित्त उपस्थित होता है यह बतलाया जाता है, किंतु यह तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है, यही पता नहीं उपादान अपूर्ण हो। गुजराती में सुन ले कुछ भाई,
कहीं कोई निमित्त ना अस्तित्व न नकार करे,
क्या रे
उपादान अपूर्ण हो क्या रे निमित्त हजार हो ये बताओ।
अर्थ नहीं निकल रहा है ये, है ना, इस वाक्य का अर्थ ही नहीं बन रहा। देखो क्या होता है, निमित्त तो होता ही नहीं यह कहकर यदि कोई निमित्त के अस्तित्व का इनकार करे, ये यानी वो निमित्त है ही नहीं ऐसा कहता है तो वो बात सही नहीं है, ये तो नक्की है, क्योंकि उसका तो ज्ञान खोटा है, और निमित्त से कार्य होता है कहने वाले का श्रद्धान खोटा है, पर ये बात तो बिल्कुल आगम के अनुसार है। लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं उपादान अपूर्ण हो तब निमित्त उपस्थित होता है, यानी वहाँ निमित्त भी कार्य कर रहा है, ऐसी बात नक्की होती है।
नहीं नहीं ऐसे तो ये उपादान हो तेरे निमित्त हजार हो गया,
अपूर्ण हो काहे को लिखा,
कार्य मतलब उपादान में कार्य नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ तो वो नहीं होता है, कार्य हुआ तो निमित्त हजार हुआ,
अपूर्ण कार्य को
और लिखते हैं, किंतु यह तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है,
अपूर्ण शब्द यदि निकाल दो
हाँ तो चलेगा,
तो घटित हो रहा है, जहाँ उपादान होता है वहाँ तो निमित्त हाजिर हो
गया, हाँ शुद्धि अशुद्धियाँ शुद्धियाँ कुछ है, इसमें कोई दिया नहीं है, नहीं नहीं यहाँ कोई शुद्धि है, शुद्धि पत्रक नहीं है, है हमारा मां छे नहीं, हम
सब में ऐसे लिखा है ना,
गुजराती में भी ऐसे ही लिखा है, वो चलो वो अपूर्ण को हम बिना पढ़े पढ़ते हैं,
जहाँ उपादान है वहाँ तो निमित्त होना ही चाहिए।
हाँ।
तो ये निमित्त का ज्ञान कराने के लिए
देखो कई बार वो बात नहीं है यहाँ पर। निकाल नहीं देवे जब अभी अपन
उपादान हुए तेरे निमित्त हाजिर हुए
ऐसा
ही चाहिए।
इसको थोड़ा सा पेंसिल से निकाल दो,
यानी वो पूरा वाक्य का भी अर्थ लगता है कि निमित्त होकर नहीं हम कोई कोई निमित्त ना अस्तित्व नकार करे त्यारे उपादान हुए तेरे निमित्त हाजिर हो ये बतावे है
ना। यह बतलाया जाता है किंतु यह तो यानी ये जो बतलाया गया है निमित्त का ज्ञान कराया है वो निमित्त क्या उधर होता ही है ये समझाने के लिए बताएं। तो कई लोग ऐसा करते हैं निमित्त कार्य नहीं करते तो निमित्त का नाम क्यों निकालते हैं आप, उससे हमारा घोटाला हो जाता है।
होता नहीं तो निमित्त को ही नहीं मानते।
नहीं मानने की बात नहीं, निमित्त तुमने लिखवाया क्यों, निमित्त की बात ही क्यों करी, हमारा और कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं। पर भाई ज्ञान जो है वो किसको नहीं जानेगा, सबको जानेगा और सब जानेगा। तो केवली के ज्ञान में जो बात आई है वो तो बताएंगे और वो जानने में भी हमें कुछ कंटाला या उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। निमित्त को निमित्त रूप से रखो, गुरुदेव कितनी बार बोलते थे उपादान को उपादान रूप से रखो निमित्त को निमित्त, कहीं तो मांडवली करो ऐसा बोलते थे वो ऐसी बात नहीं। यहाँ तो ये अपूर्ण की बात जो है वो बराबर हमें ख्याल में नहीं आ रही है, उसको हम ओमिट करके पढ़ते तो थोड़ा सा खुलासा मिलता है, है? अच्छा तो क्या लिखा है क्या उसमें शुद्धि पत्र में? नहीं नहीं पेज नंबर 55 पे है क्या कोई रिसेप्शन? फिफ्टी टू है जाने दो, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो निमित्त के अस्तित्व को ही स्वीकार न करे उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। यहाँ सम्यक ज्ञान का विषय होने से आचार्य देव ने निमित्त कैसा होता है इसका ज्ञान कराया है। जो यह मानता है कि निमित्त उपादान का कुछ करता है उसकी यह मान्यता मिथ्या है और इसलिए यह समझना चाहिए कि उसे सम्यक दर्शन नहीं है। यानी जो निमित्त को भी नहीं मानते तो उनको तो सम्यक तो भी नहीं होता है, ऐसी बात यहाँ पर बता रहे हैं। तब आगे बढ़ेंगे। मति ज्ञान के क्रम के भेद, यानी मति ज्ञान जब होता है तो उसमें क्रम से कुछ कुछ बातें जो बनती हैं वो यहाँ बता रहे हैं।
अवग्रहे हा वाय धारणा,
यानी क्या कहना चाहते हैं अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये तो ब्रैकेट में लिखा है। इसके आगे अवग्रह इहा अवाय और धारणा यह चार भेद है। ये कौन से ज्ञान के भेद है? मति ज्ञान। तो मति ज्ञान पहले होता है कि श्रुत ज्ञान पहले होता है? पक्का। और मति ज्ञान किसके पहले, मति ज्ञान के पहले क्या होता है? कोई बात नहीं, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये मति ज्ञान की ऐसा नहीं। अब आगे अवग्रह, अवग्रह का अर्थ क्या है? चेतना में यानी यहाँ ज्ञान में जो थोड़ा विशेषाकार भाषित होने लगता है उसे, उस ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। यानी कुछ तो भी चीज देखी है, कुछ तो भी भास हुआ, भास हुआ इनसे ख्याल में आया, भासित हुआ, भास नहीं हुआ, भासित हुआ, तो कहते हैं उसको अवग्रह कहते हैं। विषय और विषयी है ना, इसमें निषयी आया मेरे इसमें, वह चाहिए ना। विषय और विषयी, विषय यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिस विषय के बारे में कहा जा रहा है वह विषय यानी विषय करने वाले के योग्य स्थान में आ जाने के बाद होने वाला आद्य ग्रहण अवग्रह है। स्व और पर दोनों का जिस समय जो विषय हो उसका पहले अवग्रह होता है। यानी क्या कहना चाहते, बहुत दूर कोई चीज है वो अपने विद इन आई साइट आ जाए, यानी क्लियरली खता हो, तो वो जो उसका जो आद्य ग्रहण है यानी जब जाना जाता है कुछ तो भी है तो उसको कहेंगे अवग्रह। और ये अवग्रह किसके बारे में हो सकता है, स्व और पर दोनों का, यानी अपने आत्मा का भी अनुभव करने जाएगा तो उस समय उसमें भी अवग्रह होगा। स्व और पर दोनों का जिस समय जो विषय हो उसका, यानी बाह्य विषय हो या अंतरंग विषय हो जो भी हो उसका पहले अवग्रह होता है, इसी को इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। अब इहा अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा, चेष्टा यानी प्रयत्न करना, आकांक्षा, इसको इहा कहते हैं। इहा का विशेष वर्णन 11वें सूत्र के नीचे दिया गया है जिसको कंसेप्शन कहा गया था। यानी देखो ऐसा हमें देखना है, क्या है कि आकाश में कुछ सफेद सफेद सा कुछ जा रहा है, तो वो आकाश में है वह पताका है, पताका बोले क्या बोलते हैं, हाँ जी ध्वजा नहीं, वो
बगुले की पंक्ति है क्या,
हाँ बगुले की पंक्ति एक ऑप्शन हुआ और दूसरा
पताका
कौन है, झेंडा झेंडा पट ध्वजा फहरा रही है, तो वो दोनों क्या है ये पहले तो पता नहीं था, फिर और आकांक्षा होगी क्या है, तो कहते विशेष जानने की और आकांक्षा रही है, चेष्टा हुई, तो उसको कहेंगे इहा। अब अवाय, अवाय का अर्थ है विशेष चिन्ह देखने से उसका निश्चय हो जाए, यानी फिर और विशेष ध्यान पूर्वक देखे या वो चीज नजदीक आए तो हम नक्की करेंगे ये तो बगुलों की माला है, पंक्ति है, जा रही है, तो वो तो निश्चय हो गया, तो उसको कहेंगे अवाय, या उसका दूसरा इंग्लिश में कहते उसको जजमेंट। तो पहला है परसेप्शन, फिर कंसेप्शन, यानी कंसेप्शन यानी और अधिक अच्छी तरह से जान लेना उसके बारे में, और जजमेंट यानी निर्णय हो जाना कि भाई ये यही है, और धारणा अवाय से निर्णित पदार्थ को कालांतर में न भूलना, सो धारणा है। ये क्या है, रिटेंशन, यानी मैं आपसे पूछूंगा आज तारीख कौन सी है, 11, आपकी पहली बेटी की शादी हुई समझो 10 साल पहले हो गई, मुझे मालूम है, फिर भी अपना अंदाज करते हैं बेटी की क्यों आपकी शादी हुई, जब जो खाना बना था जो आइटम वो अभी भी हमको याद है, और आज 11 तारीख, 5 तारीख को सुबह नहीं 5 तारीख को क्या खाना खाया था, तो वो धारणा में नहीं रहा, लेकिन वो बात 40 साल पहले शादी हुई है फिर भी अभी भी पक्का ध्यान में है, धारणा में है, वो मति ज्ञान है। ऐसा ही होता है, किसी ने गाली दी हो 25 साल पहले भी तो वो आदमी दिखते ही याद आता है कि इसने मुझे ऐसा कहा था, वो धारणा में रहा, और बाकी उसने कुछ अच्छी बातें बनाई है बताई होगी या कही होगी ध्यान में नहीं रहती है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये मति ज्ञान में 3 बातें, पहले तो अवग्रह, फिर बाद में इहा, फिर अवाय और फिर धारणा। तो जो बात धारणा तक पहुंचती है वो ज्ञान में रहती है अधिक काल, उसको भी लिमिट है। ये धारणा ज्ञान ऐसा भी हो सकता है कि एक दो भव तक आगे भी चले या अनेक भवन तक चले। जैसे हम आगम में देखते हैं ये जो पारसनाथ मुनि थे और उनके 10 भव पूर्व वो कमठ था उनका भाई, तो उन दोनों का यानी वो कमठ का इनके प्रति द्वेष परिणाम था। और वो कोई भी इसमें जावे अगले गति में अगले भाव में वो बराबर उसको ढूंढ लेता था और उससे तो यानी ये वैर उनका जो चलते हैं तो धारणा में बैठा था, जो कुछ उनके पहले कारण बने हो तो बने ऐसा। ये धारणा ज्ञान तक नहीं पहुंचता है तो हम न मालूम 2 दिन में भूल जाते हैं या 10 दिन में भूल जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अरे ये कुछ भव पूर्व मुझे ऐसा किसी आचार्य ने कहो या मुनि ने अब हाजी ऐसा उपदेश दिया था वो याद आवे और उसको समय करो जाए। तो ये ज्ञान की बात है, धारणा ज्ञान की। और हम क्या मानते हैं, आ भवमा संस्कार तो रेड़ो, अगला भवमा काम आवे। वो संस्कार जो कुछ बात कर रहे वो तो ज्ञान की पर्याय है और हम बच्चों पे संस्कार करना चाहते हैं वो तो चारित्र की बात है, यानी उनको अच्छी सिखाए सीख देवे अच्छी बातें समझाए। लेकिन ये संस्कार के में हम जरा थोड़ी सी गलत कर देते हैं और अभी संतुष्ट हो जाते हैं, हमने तो वाँची पची जो ही आवे आवता होगा जे थे आटलू करू तो कहीं ना कहीं काम में आवे ऐसा अपन नक्की करते हैं हम। लेकिन ये तो ज्ञान की पर्याय है और हमने पहले भी देखा था उसको स्मृति आदि आदि अलग नामों से देखा था, प्रत्यभी ज्ञान चिंता यानी चिंतन करना वगैरह वगैरह। वो तो भाई तुमने याद रखा होगा तो ही तो उसके बारे में सोचेंगे चिंतन करेंगे। धारणा तक की बात नहीं पहुंची तो क्या चिंतन होगा। स्मृति यानी पहले जो धारणा में बात रही थी वो याद आना, तो वो धारणा में रही तो ही याद आएगी ना।
धारणा पूर्वक स्मृति
अब आगे बढ़ेंगे। आत्मा के अवग्रह इहा अवाय और धारणा। जीव को अनादि काल से अपने स्वरूप का भ्रम है, यानी जैसा स्वरूप है वैसे अभी उसने जाना भी नहीं और माना भी नहीं और भ्रम है। इसलिए पहले आत्मज्ञानी पुरुष से आत्म स्वरूप को सुनकर युक्ति के द्वारा यह निर्णय करना चाहिए कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है। देखो यहाँ 2-3 बातें बताई हैं, पहले अभी वर्तमान अवस्था बता रहे हैं। कौन सी अवस्था है, अपने को यानी मुझे मेरे स्वरूप के प्रति भ्रम है, ये पहली बात। तो क्या करें अभी आत्मज्ञानी पुरुष से, क्यों आत्मज्ञानी पुरुष से, क्योंकि उसने उसका अनुभव लिया है और उसका वास्तविक स्वरूप उसका यानी आत्मा का वास्तविक स्वरूप वो अनुभव पूर्वक जानते हैं। तीसरी बात क्या है, उस आत्म स्वरूप को सुनकर युक्ति के द्वारा, यहां युक्ति का अर्थ क्या है, न्याय और प्रमाण के द्वारा, उसे युक्ति कहेंगे।
न्याय
नहीं, न्याय और प्रमाण, न्याय नहीं, कहीं कहीं युक्ति को न्याय भी कहेंगे लेकिन यहां न्याय और प्रमाण हमने पहले देखा था, उसे युक्ति कहेंगे द्वारा। क्योंकि ये जब तक देशना नहीं मिलती है, और देशना तो जिसे हम कहेंगे कि आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष के द्वारा ही दिया गया, जो आत्मा के बारे में 7 तत्वों के बारे में 6 द्रव्यों के बारे में जो कुछ बातें बताई जाती हैं उसी को देशना कहेंगे। अब मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, मुनि महाराज बैठे हैं और उनको आपको देखकर उनके बचपन की याद आई, तो फिर उन्होंने पूछा कैसा है क्या है वगैरह वगैरह, तो वो कोई देशना नहीं कहलाएगी। ये तो तत्व के बारे में जो कुछ बातें होगी उसी को देशना कहने में आएगा। तो कह रहे हैं पहले आत्मज्ञानी पुरुष से आत्म स्वरूप को सुनकर, बाकी किसको, अन्य किसी को सुनकर की बात नहीं, आत्म स्वरूप को सुनकर युक्ति के द्वारा यह निर्णय करना चाहिए कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है। यानी ये निर्णय तो हमें स्वयं को करना चाहिए। हाँ सर बोलो। तत्पश्चात के बाद डॉट डॉट
के पहले डॉट डॉट।
अच्छा
ये
निर्णय करो पची
ये यहाँ ऐसा लिखा है यह निर्णय करना चाहिए। यानी ये गुजराती में आया आपके यह निर्णय करना
आत्मज्ञान स्वभाव है वो निर्णय करो।
हाँ तो ये आत्मज्ञान स्वभाव है ये बाद में लिखा और आपके यहाँ पहले लिखा
उसके बाद में वापस
उसके बाद में अपने उसका लक्षण
ठीक है कोई बात नहीं। गए दो तीन दिन से रोज रात को एक फोन आता है आप गए थे एक बहन है कोई घाटकोपर से और आपको इंटरेस्ट आवे इसलिए कहता हूँ वो वो हमको आज में बहुत सालों से फोन करती है। अभी फिर बीच में साल डेढ़ साल बंद हो गया था अभी फिर से चालू हो गया। वो कहते साहेब हमने एक बात तमें बताओ हूँ भवी छू के अभवी छू। तो मैंने कहा भैया मैंने तुझे देखा ही नहीं है और मैं ना पर कोई सम्यक दृष्टि जीव हो सामे वालो भवी छे के अभवी छे एनो निर्णय करी सके के नहीं। मैंने कहा जो सम्यक दृष्टि हो वो सामने वाला सम्यक दृष्टि है क्या नहीं ये कदाच निर्णय कर पावे पर वो भवी और अभवी। तो मैंने कहा ये क्यों आप बार बार पूछते और ये सताती है। बोले अरे कुछ उसने ऐसे कुछ बोला याद आएगा तो बोलूंगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर बोला कि मेरी नानी वो हमेशा मेरी माँ को कहते कि तू भवी है और मुझको कहते कि तू अभवी है। फिर मैंने वो बेनश्री बेन का वो कुछ पढ़ रही थी वो ये क्या है कौन सा स्वानुभव दर्शन उसमें ऐसा लिखा है कि जो तत्प्रति प्रीति चित्ते ने उसको बोलने को नहीं आया जो आत्मानी बात रुचिपूर्वक सांभळे ई भवी छे। हूँ बहु रुचिपूर्वक सांभळू छू हूँ रोज हूँ आत्मा छू हूँ ज्ञान स्वरूप छू एटले आत्मानी बाबत में ज हूँ चिंतन करू छू। मैंने कहा फिर आपका उत्तर तो आप ही दे रही है फिर काय को पूछती है। नहीं पण तमे कहो। मैंने कहा हमको क्या मालूम। नहीं नहीं तमे आने उज्ज्वला बेन बने निकट भवी छो। अरे परसों आया था और बाद ऐसी मैं बोला बेन अभी मारा घर में खोटा बोलाओ मारा घर में मेहमान आवे छे और मैंने जरा इमना साथे वात करो ना पण तमे एक मिनिट सांभळो फिर और दस मिनिट लगाती है। यानी थोड़ा सा कुछ होगा कुछ गड़बड़ पता नहीं है। मैंने कहा आप चिंता मत करो आप स्वाध्याय करो ना हूं तो आत्मा ना आत्मा 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 आंखों दी रटन ज करू छू। मैंने कहा वो तो तोता रटन हुआ शू पोपटियु ज्ञान थयु। मैंने उनसे पूछा आप तो हूं शू करू आत्मा नो अनुभव करो एटले शू करू केवो पुरुषार्थ करू। मैंने कहा पहले ये नक्की करो कि आत्मा का अनुभव कैसा होगा। त्रिकाली स्वभाव को जानते रहना वो से होगा या पर्याय की तरफ नजर रखते हुए होगा। ना 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 पर्याय तरफ रहा है तो नहीं था है। इतना जानती है मतलब उसका अभ्यास भी है। मैंने कहा भवी या अभवी यह स्वभाव है या पर्यायगत स्वभाव है। હા એ તો પર્યાયમાં હોય તો તમે પર્યાયનું ચિંતન કરો તો આત્માનો ભાવ ક્યાંથી થાય? હા એસા બોલી તો મુજે યે કહેના હૈ કે ઉસકો અભ્યાસ તો હૈ, કોઓર્ડિનેશન નહીં બન રહા. વૈસે યહાં પર ભી બાત આતી હૈ કે આત્મા કો સુનકર સ્વયં નિર્ણય કરવો એટલે શું કરું? મેં બોલા નિર્ણય કર તું કે મેં આત્મા કેસા હું. ફિર બહુ સમજાયા, અભી ક્યા ક્યા નહીં સમજાયા મુજે, કિતની બાતે યાદ આતી હૈ, કુછ નહીં ભૂલ જાતા હું. બોલે મુજે એક ઉત્તર દેના, તું ખાના ખાતી હો કે નહીં? હા એમ કહેવાય છે. દેખો કિતનો હોશિયાર હૈ. હા તો ફિર મેને કહા નહીં, હા બસ ઠીક છે, આત્મા ખાતા હૈ યા શરીર ખાતા હૈ યે તો નક્કી કરો, પણ આત્માની ઈચ્છા થાય ને એસા બોલતી. ઈચ્છા થાય પણ ખાય કોણ? કે આત્મા નથી ખાતો એટલે કોણ ખાય? શરીર ખાય. મેં કીધું પછી તમે યાને એસી ગડબડ હો રહી ઉસકે દિમાગ મેં, ઓર વો કિસકો ને કિસકો, વો અપને પ્રજ્ઞા સેઠ હૈ ને ઉસકે રિલેટિવ હૈ. ઇન્ટરેસ્ટ આ ગયા ને? ये बात कितनी बार गुरुदेव ने बताई थी, हमें भी प्रश्न पड़ता था. आत्मा में एकाग्र हो जाओ. अरे एकाग्र हो जाओ यानी क्या करो? ऐसा मतलब वो बोलने में तो कुछ आएगा नहीं, ऐसा ही बताएंगे. स्वर के तरफ ध्यान हटाकर स्व के तरफ रखो, जो कुछ बोलेंगे. तो यहां तो बहुत सही बात बताते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष से आत्मस्वरूप को सुनकर अब युक्ति के द्वारा निर्णय करना चाहिए कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है. ये हमारा मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान के अलावा मैं कुछ भी कर नहीं सकता, ये जब तक हम इस निर्णय को पक्का नहीं करते तो कहते काम नहीं बढ़ेगा आगे. देखो अभी आगे बताते हैं. पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण इंद्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि को मर्यादा में लाकर, ये 144 समयसार गाथा है. हाँ विद्या नहीं है लेकिन अपने को तो मालूम है ना, हम पढ़े हैं ना, तो आपको सबको मालूम है. ये क्या कहा? पर पदार्थों की प्रसिद्धि के कारण कौन है? तो इंद्रिय तथा मन, इनके द्वारा जो प्रवर्तती हुई जो ज्ञान की पर्याय है, प्रवर्तमान बुद्धि को मर्यादा में लाकर यानी उसको वहां से हटाकर, अर्थात पर पदार्थों की ओर से अपना लक्ष्य खींचकर यानी वापस लाकर, जब आत्मा स्वयं स्वसन्मुख लक्ष्य करता है, तब प्रथम सामान्य स्थूलतया आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ. एक ऐसा ज्ञान है, स्थूल ज्ञान है, सामान्य है, वो अनुभव नहीं है. वह आत्मा का अर्थावग्रह हुआ. अवग्रह ज्ञान हुआ ना. हाँ वो बुद्धि को हम
बुद्धि और ज्ञान में कुछ फर्क
है? देखो भाई, बुद्धि यानी यहाँ मति ज्ञान लेना, वैसा एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं. यहाँ पर अगर आपको देखना है तो हमारे यहाँ तुम्हारे गुजराती है क्या? मेरे यहाँ 51 पेज है, तो इसमें से चार पांच पन्ने निकाल दो, 6 पन्ने, और वहां मति स्मृति संज्ञा और उसमें बुद्धि भी नाम दिया था. हाँ बुद्धि दिया था, उधर नहीं है, उधर नहीं है, 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 है. स्वसंवेदन और बुद्धि नीचे उसी के लाइन में, ये आभी निबोध लिखा है ना बड़े अक्षर में, उसके नीचे एक पैराग्राफ जाने दो, फिर बुद्धि मेघा मेधा प्रतिभा आदि आदि आदि, ये सब मति ज्ञान के ही प्रकार है. तो यहाँ जो बुद्धि जो कह रहे हैं ना, बुद्धि यानी ज्ञान भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी मति ज्ञान की बात सोच रहे हैं ना, तो उसको मति ज्ञान लेना.
ऐसे कोई फर्क है बुद्धि और ज्ञान में?
अब उसको आप जिस अपेक्षा से देखो वैसा है. सामान्यतः तो दोनों एक ही है, अभी ज्ञान कहो या बुद्धि कहो, उसमें आप किस तरह डिफरेंस कर रहे हैं?
अक्कल को,
मैंने कहा ना सामान्य रूप से तो एक ही कहेंगे, यानी आप में ज्ञान कम है कहो या बुद्धि कम है कहो या अक्कल कम है कहो, हर तो ही कहिए। और ये बहुत बुद्धिमान है, अक्कलवान है या ज्ञानवान है, ऐसा भी कहेंगे तो ये रिलेटिव टर्म है सब। फिर अभी यहां अपनी क्या बात चल रही थी, थर्ड लाइन में पढ़ रहा हूं, तब प्रथम सामान्य स्थूलतया आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ, वह आत्मा का अर्थावग्रह लिखा है उसको हम अवग्रह हुआ इतना ले, ये अर्थावग्रह और व्यंजन अवग्रह इसका अभी हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है। तत्पश्चात स्व विचार के निर्णय की ओर उन्मुख हुआ, यानी ये अभी कैसा है, ये मति ज्ञान, अभी हम वो बगुले की पंक्ति को छोड़ो, यहाँ आत्मा के बारे में ये जीव सोचना चालू कर रहा है, उसकी बात बताए क्या हुआ। पहले सामान्यतः स्थूल आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ, किससे, वो गुरु से हमने उपदेश सुना और हमारी बुद्धि तो बाहर बाहर दौड़ती थी, उसको हमने समेट कर अपने तरफ लाया और अपने को पहले आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ, वह अवग्रह हुआ। तत्पश्चात स्व विचार के निर्णय की ओर, यानी वो अभी पर का ध्यान ही छूट गया, जानना भी कम हो खत्म हुआ और अपने को जानने को उन्मुख हुआ, सो इहा और निर्णय हुआ सो अवाय, अर्थात इहा से ज्ञात आत्मा में यह वही है अन्य नहीं, ऐसा दृढ़ ज्ञान निर्णय हुआ ना, अवाय है। आत्मा संबंधी कालांतर में संशय या विस्मरण न हो सो धारणा है, यानी वह जो फिर दोबारा आत्मा का अनुभव करेगा तो वो तो उसने तो पहले ये शब्द आया था ना दृष्टि पत्र, क्या है वो,
दृष्ट पत्र,
दृश्य पत्र,
दृष्ट पत्र,
दृष्ट पत्र,
अच्छा देखा हुआ मार्ग,
दृष्ट पत्र, यानी एक बार हमने कोई रास्ता देखा हो तो दोबारा वहां जाने में हमें तकलीफ नहीं होती है, वैसे एक बार धारणा में ज्ञान आया है, अपना स्वभाव आया है तो दोबारा उसको पकड़ने
के बारे में आया है। एक बार समय तो प्राप्त करके कोई विद्या तो में गया है तो दोबारा दृष्ट पथ कहते
हो तो, हाँ वो तो मिथ्यात्व की और सम्यक्त्व की बात करी, मैं तो कहूँगा जो सम्यक भी है वह दोबारा भी सम्यक्त्व की,
हाँ उसी के लिए आया था। अभी जो अपने बुद्धि के लिए पता है पूछा था, इति शब्द आया था ना, इति अर्थांतरम, तो बुद्धि तो मति का प्रकार है क्योंकि पदार्थ के ग्रहण के शक्ति स्वरूप को बुद्धि कहते हैं, मेधा है वो स्मृति का प्रकार है,
मेधा
स्मृति का है, यानी शब्द के स्मरण की शक्ति को मेधा कहते हैं, प्रज्ञा है वो चिंता का प्रकार है,
चिंता
चिंता किसको कहा था कल,
चिंतन करना,
चिंता उसमें लिया था ना,
उसी ऊपर आया मेधा, यानी क्या
मेधा, यानी शब्द के स्मरण की शक्ति,
वो भी ज्ञान की हो गई,
स्मृति का प्रकार, ये सभी ज्ञान के भेद है।
बुद्धि का क्या बताया,
बुद्धि यानी पदार्थ के ग्रहण करने की शक्ति, यानी जानने की शक्ति, वो बुद्धि, प्रज्ञा चिंता का प्रकार है, वितर्कपना का निषेध है इसमें, और प्रतिभा उपमा ये संज्ञा का प्रकार है, ठीक है। अभी बाकी तो हमने कल वो व्याप्ति व्यक्ति सब देखा था।
हो गया, देखो मैं फिर से दोबारा पढ़ूंगा ताकि अपने को जो कुछ पढ़ा है वो बिल्कुल ख्याल में रहेगा, भूले नहीं। पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण इंद्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि को मर्यादा में लाकर, अर्थात इसी अभी जो वाक्य पढ़ा उसी का अर्थ ऐसा है, पर पदार्थों की ओर से अपना लक्ष्य खींचकर जब आत्मा स्वयं स्वसन्मुख लक्ष्य करता है तब, यानी ये स्वसन्मुख लक्ष्य भी स्वयं करना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे को हम कुछ सिखा रहे और उसका इधर उधर ध्यान देते, जरा इधर ध्यान दे, और वो पूरा ध्यान दे के वो अपन गणित सॉल्व कर रहे हो समझेगा तो वो दोबारा उसको आएगा। तो कह रहे प्रथम खींचकर जब आत्मा स्वयं स्व सन्मुख लक्ष्य करता है तब प्रथम सामान्य स्थूल आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ, वह आत्मा का अवग्रह हुआ। यहाँ अर्थावग्रह लिखा है फिर भी हम अवग्रह कहते हैं। तत्पश्चात स्वविचार के निर्णय की ओर उन्मुख हुआ, यानी वह फिर और आकांक्षा हो गई ना उसको अधिक जाने, तो उस तरफ और आकर्षित हुआ। सो इहा और निर्णय हुआ, सो अवाय अर्थात यहां से ज्ञात आत्मा में यह वही है अन्य नहीं, ऐसा दृढ़ ज्ञान अवाय है। अवाय का अर्थ क्या, दृढ़ ज्ञान, निर्णय पूर्वक जो ज्ञान होता है। आत्मा संबंधी कालांतर में संचय या विस्मरण न हो सो धारणा है। यहां तक तो मति ज्ञान में धारणा तक का अंतिम भेद हुआ। इसके बाद यह आत्मा अनंत ज्ञानानंद शांति स्वरूप है, इस प्रकार मति में से प्रलंबित तार्किक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, यानी उसके बाद श्रुत ज्ञान की शुरुआत होती है। ये बता रहे भीतर स्व लक्ष्य में मन इंद्रिय निमित्त नहीं है। भीतर यानी ये अपने स्वरूप को समझने की बात चलती है, स्व लक्ष्य हुआ है, वहां मन और इंद्रियां वहां कार्यरत नहीं है, है वे हाजिर है पर उसका कोई वहां कार्य नहीं है, निमित्त नहीं है। जब जीव उससे अंशतः पृथक होता है तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। अभी हम बाकी की बात कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान